کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں، میں جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں، حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں، میں جنت کی ٹھنڈی ہواؤں۔
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على نبينا محمد۔ میں نے اس بار جب آنکھیں بند کر کے کھولی تو شیب ابی طالب کا زمانہ گزر چکا تھا، کوئی 6 ماہ ہو چکے تھے۔ مجھے پتہ چلا کہ مسلمان اسی حال میں 3 سال تک رہے ہیں۔ میں تو تھوڑی ہی دیر وہاں رہ کے اتنے سٹریس میں آ گئی تھی، پتہ نہیں ان لوگوں کا کیا حال ہوا ہوگا جو دن اور رات اسی ماحول میں رہے ہوں گے، اسی کشمکش میں ہوں گے، جو ان حالات میں بے یار و مددگار پڑے ہوں گے۔ ان کے بچوں کا کیا حال ہوگا، ان عورتوں اور بوڑھوں کا کیا حال ہوگا؟ میں اس کا اندازہ اس بات سے لگا سکتی تھی کہ اب مسلمان جب واپس اپنے گھروں میں آئے ہیں تو ان کے وہ حالات نہیں ہیں جیسے کہ ابو طالب اور میری امی خدیجہ دونوں سخت بیمار پڑ گئے ہیں۔ ابو طالب تو ویسے بھی ضعیف ہو چکے تھے، شیب ابی طالب کے حالات نے ان کی بوڑھی ہڈیوں کے اوپر بہت اثر ڈالا تھا۔ قریش کے بڑے بڑے سردار ان کی بیمار پرسی کے لیے آ رہے تھے، ان میں ابو جہل بھی تھا، امیہ بھی تھا، عتبہ، شیبہ، ابو سفیان وغیرہ۔ ان میں سے ایک بولا، ہمارے نزدیک آپ کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ آپ خوب جانتے ہیں، جو بیماری آپ کو لگی ہوئی ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے، ہمیں ڈر ہے کہ کہیں آپ اپنے آخری ایام میں نہ ہوں۔ آپ کو پتہ ہے نا جو ہمارا معاملہ آپ کے بھتیجے کے ساتھ چل رہا ہے، اس کو بلائیں اور کچھ نہ کچھ عہد و پیمان لے لیں اس سے اور ہم سے بھی، تاکہ وہ ہم سے باز رہے اور ہم اس سے باز رہیں۔ ابو طالب کو بیماری میں مبتلا ہیں، ان کی حالت بہت کمزور ہے، مگر اس کے باوجود وہ غلام سے کہتے ہیں کہ محمد کو بلا لاؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کچھ ہی دیر میں میرے نبی تشریف لے آئے ہیں، میں نے دیکھا ابو طالب کے ساتھ صرف ایک شخص کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ ابو جہل ملعون کو یہ خطرہ ہوا کہ کہیں میرے نبی اپنے چچا کے ساتھ نہ بیٹھ جائیں اور کہیں ابو طالب کا دل نرم نہ ہو جائے، لہٰذا وہ جھٹ سے اس جگہ پہ خود براجمان ہو گیا۔ میرے نبی کو تو دیکھو کتنے پیارے ہیں، کوئی تکبر نہیں، کوئی غرور نہیں، کوئی بڑائی کا زوم نہیں، حالانکہ سب میں کامل، سب سے بہترین انسان۔ ان کو کوئی اور جگہ چچا کے قریب نہیں ملی تو دروازے کے پاس ہی بیٹھ گئے۔ اتنے سارے لوگوں سے کمرہ بھرا ہوا تھا، ابو طالب نے نحیف سی آواز میں ان سرداروں کو مدعا بیان کیا تو میرے نبی نے بڑی شائستگی سے فرمایا، میں آپ کی بات سنوں گا، کہیے۔ ابو جہل نے بات شروع کی، آپ ہمارا ذکر کرنا چھوڑ دیں، ہمارے اوپر اور ہمارے معبودوں پر الزام لگانا چھوڑ دیں، ہم آپ کو اور آپ کے خدا کو چھوڑ دیتے ہیں۔ مگر میرے نبی یہ بات کیسے مان سکتے تھے؟ آپ کے جواب نے سرداروں کو مایوس کر دیا اور وہ رخصت ہو گئے۔ ابو طالب جو ساری زندگی میرے نبی کی حمایت کرتے رہے، हिफाजत करते रहे, दिफा करते रहे। लोगों की मुखालफत उन्होंने अपने भतीजे के लिए सही। उन कुरैश की अदावत मोल ली, लेकिन मेरे नबी का साथ कभी नहीं छोड़ा। अपनी मौत के वक्त भी उनको यही फिक्र खाई जा रही थी कि मेरे नबी का क्या बनेगा, कि मेरे बाद इनके साथ क्या सलूक होगा। मेरे नबी ने फरमाया, चचा जान, मैंने अपनी कौम को एक हकीकत की तरफ ही दावत दी है, कोई जुल्म और ज्यादती की बात तो नहीं की। अबू तालिब बोले, हां भतीजे, खुदा की कसम तुमने कोई हद से बड़ी भी बात नहीं की। तुम्हारा मुतालबा कुछ भी ऐसा नहीं है। मेरे नबी को चचा की ये बात बहुत पसंद आई। फरमाया, चचा जान, मेरे दिल में आपकी बहुत इज्जत है और आपके बहुत एहसान आते मेरे ऊपर। आज मैं इनका बदला चुकाने के लिए कुछ भी नहीं पाता, सिवाय इसके कि मैं आपसे एक बात का मुतालबा करूं कि इसकी वजह से मेरे लिए अपने रब के हजूर आपकी सिफारिश करना हलाल हो जाएगा। बस आप एक दफा इकरार कर लें कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं है। इस कलमे से मौत के वक्त भी आपको इज्जत मिलेगी और आपकी और दुनिया के दरमियान अब जो मौत हायल हो रही है, इस कलमे की वजह से आखरत में भी बुलंद मर्तबे आपको मिलेंगे। अबू तालिब ने अपने बारे में मेरे नबी की ये ख्वाहिश जब सुनी तो फरमाया, भतीजे, अगर मुझे ये डर ना होता कि मेरे बाद तुम्हें और बनू अब्दुल मुत्तलिब को कुरैश बुरा भला कहेंगे और ये गुमान करेंगे कि मैंने कलमा मौत के डर से पढ़ लिया, तो तुम्हारी खुशी की खातिर मैं ये कलमा जरूर पढ़ लेता। मैंने ये बात सुनी तो मैं तड़प उठी। पढ़ लें कलमा, पढ़ लें, खुदा के लिए पढ़ लें, आप पछताएंगे, खुदा के लिए आप ये पढ़ लें। मैं देख रही थी जो कर्ब मेरे नबी के चेहरे पर था, इस कदर दुख, इस कदर गम, और आखिर क्यों ना होता। एक तरफ वो चच्चा जो मुखालफत पर कमर कस चुका था, अबू लहब जो मेरे नबी को कोई एक लम्हा भी ऐसा नहीं देता था जिसमें आपको सुख का सांस मिल जाए, दूसरी तरफ ये चच्चा जो मेरे नबी को इतने महबूब थे, लेकिन अब ये भी कलमा पढ़ के नहीं दे रहे। अपनों के हाथों मेरे नबी ने कितना दुख सहा है। मुझे याद आ गया, मैं भी अपने बच्चों को जब दीन की तरफ आने का कहती, जब उनको अल्लाह के रास्ते की तरफ बुलाती और वो नहीं आते थे, तो मैं कितना तड़पती थी। वो बहुत अच्छे बच्चे हैं, मुझे अपनी औलाद से बहुत मोहब्बत है, मगर बावजूद चाहत के मैं उनके दिलों में अल्लाह की मोहब्बत नहीं डाल पाई थी। और इसका जो दुख मेरे अंदर है, वो मैं समझ सकती हूं कि मेरे नबी की इस वक्त क्या हालत हो रही होगी। कहीं महबूब चचा नहीं मान रहे और कहीं एक चचा मुखालफत पे तुला हुआ है, और मेरे नबी इन्हीं की खैर ख्वाही में घुले चले जा रहे हैं, जैसे वालदेन को अपनी औलाद की खैर ख्वाही होती है और उनसे मोहब्बत होती है। मैंने देखा बनू अब्दुल मुत्तलिब आ गए हैं। अबू तालिब उनसे कहने लगे, तुम जब तक मोहम्मद की बात सुनोगे और उनकी पैरवी करोगे, तुम भलाई पे रहोगे, लिहाजा इनकी पैरवी करो, इनकी तस्दीक करो, तुम हिदायत पा जाओगे। मेरे नबी ने जब ये सुना तो फरमाया, है चचा, आप इनको नसीहत कर रहे हैं मगर खुद क्यों नहीं ये करते। अबू तालिब बोले, हाँ भतीजे, अगर मैं तंदुरुस्त होता तो मैं जरूर तुम्हारी बात मान लेता, मगर अब तो मौत का वक्त करीब है और मुझे घबराहट पसंद नहीं। कुरैश के लोग समझेंगे मैंने मौत के वक्त कलमा पढ़ लिया। जब सही सलामत तंदुरुस्त था उस वक्त नहीं पढ़ा। ये क्या लॉजिक थी, ये मेरी समझ से बाहर थी। अबू तालिब बोले, भतीजे मैं मर जाऊं तो तुम बनू नज्जार में अपने मामुओं के पास चले जाना। मैं समझ गई वो अब्दुल मुत्तलिब के ननिहाल की तरफ इशारा कर रहे हैं जो मदीना में था। कुछ दिन और गुजर गए। अबू तालिब की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी और आज तो इनकी हालत ऐसी थी कि यूं लगता था जान लबों पे आई भी है। मेरे नबी भी उनके करीब बैठे हैं और उधर अबू जहल और अब्दुल्ला बिन अबी उमैया भी साथ ही खड़े हुए हैं। एक तो ये हर वक्त यहां क्यों आधमकते हैं, ये हर वक्त इस फिक्र में क्यों है कि कहीं मेरे नबी अपना कोई असर अपने चचा पे ना डाल दें। मेरे नबी चचा की उखड़ती सांसें देख के फरमाने लगे, चचा कह दें अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं, मैं अल्लाह के हाँ आपकी गवाही दे दूंगा। मैं देख रही थी अपने नबी की बेबसी और कितनी ज्यादा उनको ये चाहत थी कि एक दफा चचा अपनी जुबान से ये बोल दें। वक्त कम रह गया था, कोई सांस भी अबू तालिब का आखिरी सांस हो सकता था। मेरे नबी जोर दे रहे थे, यूं लगता था कि वो पूरी अपनी जान लगा देंगे। अगर आगे से नतीजा वो नहीं निकल रहा। अबू जहल झट से बोला, अबू तालिब क्या तुम अब्दुल मुत्तलिब के दीन से फिर जाओगे? मेरे नबी ने उसकी बात को बिल्कुल नजरअंदाज करते हुए फिर अपने चचा से फरमाया, ऐ चचा आप एक दफा कह दें कि अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं। मैं देख रही थी अपने नबी की बेचैनी भी देख रही थी और अबू जहल मलून को भी देख रही थी कि उसको जरा एहसास नहीं था कि अबू तालिब आखिरी सांसों पे हैं, अब तो बाज आ जाए। यूं लगता था कि उनको चैन नहीं आएगा जब तक अबू तालिब कुफर पे दम ना तोड़ दे। अबू तालिब मौत की दहलीज पे खड़े हुए हैं और ये लोग जरा भी पीछे हटने को तैयार नहीं। एक मरते हुए इंसान के पास भी ढिटाई से अपनी बातें दोहराई जा रहे हैं। आखिर अबू तालिब ने एक सांस खींची और बड़ी मुश्किल से फरमाया, मैं अब्दुल मुत्तलिब के दीन पे हूं। इसके बाद उनको दोबारा सांस नहीं आई और वो दुनिया से रुख्सत हो गए। मेरे नबी इस कदर दुखी थे, मैंने इनको इससे पहले ऐसा नहीं देखा। मेरे नबी बोझल कदमों से वहां से निकले। घर आए तो आगे खदीजा भी बिस्तर पे पड़ी थी। जब से शेबे अबी तालिब से आए हैं इनकी यही हालत है। और क्यों ना हो, कहाँ इतनी मालदार खातून जिनके आगे पीछे नौकर चाकर पैसे की रेल पेल, कभी जिन्होंने फकरो फाका ना देखा हो, जिन्होंने कभी सूखी रोटी ना खाई हो। 3 साल तक वो एक ऐसी जगह पे रही जहां पे पत्ते खाए जाते थे, जहां पे उस चीज को जिसको हम खाना कहते हैं वो कहीं नहीं था। एक प्याला था इनके पास, एक दिन वो भी टूट गया था। ये वो हस्ती हैं जिन्होंने अपना सब कुछ मेरे नबी पे लौटा दिया था, माल भी, जान भी, घर बार भी। उधर अभी अबू तालिब का गम ताजा था, इधर मेरे नबी की प्यारी बीवी, उनकी हालत देखी नहीं जा रही थी। घर में बच्चियां हैं जो अभी तक बड़ी नहीं है इतनी, फातिमा तो बिल्कुल छोटी लड़की है। अभी 3 दिन ही गुजरे होंगे कि मेरे नबी पर एक और गम का पहाड़ टूट पड़ा। प्यारी बीवी खदीजा रुखसत हो गई। ये वो खदीजा हैं जो मेरे नबी के लिए एक ढाल थी। जब मेरे नबी पे रंज और गम आता तो ये तड़प उठती थी। इन्होंने कभी अपना माल मेरे नबी से रोका नहीं था, उनके हाथों में दे दिया था कि बेदरे खर्च करें। जब से नबुव्वत के मनसब पे मेरे नबी फायज हुए थे, वो तो कभी तिजारत के लिए नहीं निकले, वो तो एक ही मिशन पे थे और वो दावते दीन का था। ऐसे में खदीजा का ही माल था जिससे घर बार चल रहा था। संगीन और मुश्किल हालात में भी उन्होंने मेरे नबी का साथ नहीं छोड़ा, कभी उनको ताना नहीं दिया, कभी शिकायत नहीं की, कभी इस किस्म के मुश्किल हालात के ऊपर तंग नहीं किया। हत्ता के शेबे अबी तालिब में भी मेरे नबी के लिए मुश्किलें नहीं खड़ी की, वहां पे भी सब्र के साथ रही। मगर जो लोग जितने नाजो नाम में हमेशा रहे हों, उनके लिए मुश्किलात उठाना आसान नहीं होता। उनकी सेहत के ऊपर और उम्र के जिस हिस्से में वो थी उसमें ये 3 साल बहुत भारी गुजरे और बहुत गहरा असर इनकी सेहत पे डाला। इसीलिए ये अब इस बीमारी से जांबर नहीं हो सकी। आज वो दिन था जिस दिन मेरे नबी की हिमायती, गमगुसार, वफादार साथी दुनिया से चली गई। बाहर की मुश्किलात तो थीं, अब घर में एक हस्ती जो हमेशा सुकून का बाइस बनती थी वो भी रुखसत हो गई। मैंने अपने नबी को इतने गम में कभी नहीं देखा। मैंने देखा इसके बाद तो जैसे मेरे नबी बिल्कुल टूट गए, आप घर पे ही रहने लगे, कम कम बाहर निकलते, और बाहर जाएं भी तो क्या करें। अबू तालिब क्या गए, इन लोगों की तो जुर्रतें ऐसी बढ़ गई। पहले भी मेरे नबी को नहीं छोड़ते थे, मगर अब तो लगता है हर एक को फ्री हैंड मिल गया। पहले कुछ झिझक कुछ शर्म तो थी, अबू तालिब की सरदारी का रोब था इन लोगों पे, मगर अब ना किसी को शर्म रही ना कोई झिझक रही। जो राह चलता होता था, गली में खड़ा हुआ कोई शख्स, कोई औबाश नौजवान, सबके ही पर निकल आए थे। अबू तालिब होते थे तो ये लोग कुछ झिझकते थे, रोब में रहते थे, मगर अब जैसे मेरे नबी के सर पे से साया उठ गया हो। एक दिन तो मैंने देखा मेरे नबी के आंसू निकल आए। आप बहुत अफसरदा बैठे हुए थे और आप कह रहे थे, चचा जान, आपके बिछड़ जाने को मैंने कितनी जल्दी महसूस कर लिया। क्यों ना ऐसा होता, आज तो हद ही हो गई थी। कुरैश के एक अहमक आदमी ने मेरे नबी के सामने आके उनके सर पे मट्टी फेंकी थी। हाँ, जैसे ऐरे गैरे लोग भी इतनी जुर्रत करने लगे। मैंने ये देखा तो मेरा दिल कट गया। मेरी आंखों में से आंसू जारी हो गए। मेरे नबी खामोशी से घर तशरीफ ले आए, दिल तो गमजदा था ही, अब जिस्मानी अजियतें भी मिलने लगी। आपकी बेटी जब ये देखती हैं अपने बाप के साथ सलूक, तो थोड़ी भी आती हैं। अब तो घर में बीवी भी नहीं रही, आपको बिठाती हैं, पानी लेके आती हैं, आपका सर धोती जाती हैं और साथ रोए जा रही हैं। और शफीक बाप फरमाते हैं, मेरी बेटी रो ना, अल्लाह तुम्हारे बाबा की हिफाजत करेगा। कुछ देर बाद मैंने देखा मेरे नबी आजाद करदा गुलाम जैद के साथ बैठे हुए और सोच विचार कर रहे हैं इन हालात पे। यहां पे तो हालात बहुत तंग हो गए हैं, अब कहीं और जाना चाहिए। मेरे नबी ताइफ जाने का सोच रहे हैं और इसके ऊपर बातचीत चल रही है कि हो सकता है वहां के लोग साथ दे दें, हो सकता है वहां से कोई मस्बत रद्दे अमल मिले तो वहीं मूव हो जाए। मैंने जब ये सुना तो मैं चीख पड़ी, नहीं नहीं आप वहां ना जाएं, वो लोग आपके साथ बहुत बुरा सलूक करेंगे, आप वहां ना जाएं। मेरे आंसू बह रहे थे, मेरा रोना थम ही नहीं रहा था। मेरे नबी ने इतनी मुसीबतें उठाई मेरे लिए और मेरे जैसों के लिए, ताकि ये आखरत की फलाह का पैगाम, हमेशा की कामयाबी का पैगाम मुझ तक पहुंच जाए। मैं तो कभी आपका कर्ज अदा कर ही नहीं सकती। मैं देख रही थी अगर आज आप इस काम को छोड़ देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपकी जिंदगी में, आपको ये लोग हाथों हाथ लेंगे, सब आपकी इज्जत करेंगे, सब खुश हो जाएंगे। वो यही तो चाहते हैं, उनको आपसे नफरत क्यों है? उन्होंने आपकी जिंदगी को अजीरन क्यों बनाया है? क्यों ये अजियतें देते हैं? सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि मेरे नबी इस पैगाम को पहुंचाने से बाज नहीं आ रहे। मेरे नबी ने तहैया किया हुआ कि ये पैगाम दुनिया जहान तक पहुंच जाए। मेरे नबी ये सब इसलिए बर्दाश्त कर रहे हैं, इसलिए अपने आप को हलकान कर रहे हैं, इसलिए अपनी जिंदगी में ये मुसीबतें बर्दाश्त करें ताकि मेरे जैसों की आखरत संवर जाए। मेरा दिल चाहा मैं आपके पैरों में गिर के आपसे माफी मांगू कि मैंने तो फिर भी आपसे वफा नहीं की। आपने इतना कुछ सहा मेरे लिए और मैंने तो आपके इस पैगाम को आगे पहुंचाने में जरा भी किरदार अदा नहीं किया, और आगे पहुंचाना तो दूर की बात, मैंने तो इस पैगाम को खुद भी उस तरह से नहीं अपनाया जैसे हक था। आप मेरे लिए घुल घुल के दुनिया से चले गए और मुझे तो ये तक पता नहीं कि आप थे कौन, आपकी जिंदगी क्या थी। मुझे तो ये तक पता नहीं कि आपने मेरे लिए कितनी मुश्किलात बर्दाश्त की। और ये एहसास मुझे तो तब होता ना जब मेरे इल्म में ये सब होता, जब मुझे पता तो होता कि आपके साथ ये सब कुछ हो रहा था। आप यूं मेरे लिए तड़प रहे थे, आप यूं मेरे लिए कोशिशें कर रहे थे, मेरे लिए और मेरे जैसे लाखों के लिए। आप यूं मेरे लिए दुआएं करते हुए चले गए, आप यूं मेरे लिए मसाइब बर्दाश्त कर रहे थे, आपने अपनी जिंदगी भुला दी और घुला दी और अपने पूरे खानदान को कुर्बान कर दिया कि मेरी जिंदगी संवर जाए। मैं रोए जा रही थी और मेरे लबों पे सिर्फ एक बात थी, मैं आपका कर्ज कभी नहीं अदा कर सकती। मैं कैसे आपका कर्ज अदा कर सकती? मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती। मैंने आज सोच लिया था कि अब के जब मैं वापस अपने जमाने में जाऊंगी तो बस जो हो चुका वो हो चुका। अब मेरा मिशन ये होगा कि मैं अपने प्यारे नबी की जिंदगी को लोगों को बताऊंगी, उनको पता चलना चाहिए ये कौन है जो उनके लिए तड़प तड़प के दुनिया से गए, ये कौन है जिन्होंने अपनी जिंदगी सारी की सारी कुर्बान कर दी इनकी आखरत के लिए। मैं दुनिया को दिखाऊंगी कि उनके असल मोहसिन कौन थे। हाँ, अब मैं एक एक को बताऊंगी और यही मेरी जिंदगी का मिशन होगा। यहां तक आज हमारा इस सीरीज का आखिरी एपिसोड था। कोशिश की है कि आपके सामने अपने नबी की जिंदगी की छोटी सी झलक रख सकूं, और दुआ यह है कि मेरे नबी की मोहब्बत हर दिल में भर जाए और हर दिल को पता हो कि वो कितना मकरूज है उनका। और हम सब उनको कयामत के दिन शर्मिंदा होने से बचाएं, वो उम्मती ना बने कि जो उनका सर नीचा करते उस दिन, बल्कि ऐसे उम्मती बने कि उनका सर फखर से बुलंद हो हमें देख के उस दिन, जब वो हमसे मुलाकात करें तो खुश हो जाए कि आपने उम्मती होने का हक अदा कर दिया। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा।